लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है जापान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरितिक यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार को जापान के फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर आपदा से पीड़ित लोगों को सांत्वना प्रदान की। थाईलैंड तथा जापान में अपनी 7 दिवसीय प्रेरितिक यात्रा के तीसरे चरण में सार्वभौमिक कैथोलिक कलीसिया के परम धर्मगुरु संत पापा फ्रांसिस इस समय जापान के टोक्यो शहर का दौरा कर रहे हैं। रविवार का दिन उन्होंने जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में व्यतीत किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम हमलों और उसके फलस्वरूप हुए नरसंहार का रंगमंच बने थे। फुकुशिमा परमाणु रिएक्टर आपदा पीड़ितों से मुलाकात के अवसर पर संत पापा फ्रांसिस ने भावी ऊर्जा स्रोतों पर गहन चिंता व्यक्त की और जापान के कैथोलिक धर्माध्यक्षों के आह्वान का स्मरण दिलाया, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा के पूर्ण उन्मूलन की गुहार लगाई है। 2011 में 30 मीटर तक ऊंची समुद्री लहरों वाले सुनामी तूफान के बाद जापान के कथित ट्रिपल डिजास्टर में कई शहर नष्ट हो गए थे तथा 18,000 से अधिक लोगों के मरने अथवा लापता होने की खबरें मिली थीं। इस प्राकृतिक आपदा में जापान का उत्तरी पूर्वी समुद्री तट पूर्णतः नष्ट हो गया था तथा फुकुशिमा दाई इची परमाणु संयंत्र को महान क्षति पहुंची थी, जिसे चेर्नोबिल दुर्घटना के बाद से विश्व की सर्वाधिक गंभीर परमाणु दुर्घटना बताया गया था। हजारों लोग विस्थापित हो गए थे, जो अब कभी भी अपने घरों को वापस नहीं लौट सकेंगे। स्मरण रहे कि जापान के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने भी परमाणु ऊर्जा के पूर्ण उन्मूलन की गुहार लगाई है। फुकुशिमा आपदा के उपरांत जारी एक विज्ञप्ति में धर्माध्यक्षों ने कहा था कि जापान एक आपदा प्रभावित देश है, इसलिए यह अनिवार्य है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादन की सभी गतिविधियां समाप्त की जाएं। दुनिया के सबसे अधिक भूकंप प्रभावित राष्ट्रों में से एक होने के बावजूद जापान परमाणु ऊर्जा पर निर्भर रहा है। 2011 की परमाणु दुर्घटना के बाद सभी संयंत्रों को बंद कर दिया गया था, किंतु इसके बाद से कईयों को फिर से खोल दिया गया है।
संत पापा फ्रांसिस ने सोमवार सुबह ट्रिपल विपत्ति यानी भूकंप, सुनामी और परमाणु बम घटना के पीड़ितों से मुलाकात की। संत पापा ने इस मुलाकात को अपनी जापान प्रेरितिक यात्रा का महत्वपूर्ण क्षण बताया। संत पापा ने वहां उपस्थित लोगों से कहा कि वे उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो ट्रिपल विपत्ति से प्रभावित हुए हैं। संत पापा ने विशेष रूप से तोशिको तोकुन मुत्सुकी को अपने जीवन की घटनाओं को साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। संत पापा ने कहा, मुत्सुकी ने अपना साक्ष्य साझा करने के बाद अंत में मुझसे प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित किया। संत पापा ने वहां उपस्थित सभी लोगों के साथ कुछ देर मौन रहकर 18,000 से भी ज्यादा पीड़ितों, लापता लोगों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की। संत पापा ने तोशिको द्वारा साझा किए गए उन बातों की सराहना करते हुए कहा कि आपदाओं के तुरंत बाद न केवल जापान के लोगों ने बल्कि अन्य देशों के लोगों ने पीड़ितों के लिए प्रार्थना और आर्थिक सहायता सामग्री जुटाने में सहयोग दिया। संत पापा ने कहा, हमें इस कार्यवाही को समय बीतने के साथ खोना नहीं चाहिए, बल्कि हमें इसे जारी रखना चाहिए। मुत्सुकी ने बताया, जो प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं उनमें से कुछ को लगता है कि दूसरे अब उन्हें भूल गए हैं और कई लोगों को दूषित भूमि, जंगल और विकिरण की दीर्घकालिक प्रभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। संत पापा ने कहा कि भोजन, वस्त्र और आवास जैसी बुनियादी संसाधनों के बिना एक सामान्य जीवन जीना संभव नहीं है और जीवन को फिर से पटरी में उतारने के लिए समुदाय की एकजुटता और समर्थन की जरूरत है। ट्रिपल आपदा के 8 साल बाद जापान ने यह कर दिखाया है कि कैसे लोग एकजुटता, धैर्य, दृढ़ता और संकल्प में एकजुट हो सकते हैं। पूरी तरह से आपदा से उभर पाना लंबा समय ले सकता है, लेकिन यह संभव है कि लोगों में एक दूसरे की मदद करने की भावना बरकरार रहनी चाहिए। संत पापा ने विशेष रूप से फुकुशिमा पावर स्टेशन की दुर्घटना और उसके बाद के प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी मामलों के अलावा समाज के ताने बाने को बहाल करने की भी बड़ी चुनौती है। जब तक स्थानीय समुदायों में सामाजिक संबंध फिर से स्थापित नहीं हो जाता और लोग एक बार सुरक्षित और स्थिर जीवन का आनंद लेना शुरू न कर लेते, तब तक फुकुशिमा दुर्घटना पूरी तरह से हल नहीं होगी। अंत में संत पापा ने कहा कि हम सभी अपनी प्रार्थनाओं और आर्थिक रूप से भी मदद करना जारी रखें, जिससे कि जरूरतमंद हमारे भाई बहन अकेला या भूला हुआ महसूस न करें।
टोक्यो में सोमवार प्रातः संत पापा फ्रांसिस ने स्कॉलर्स ओकरेंटिस संगठन की जापानी शाखा के युवा प्रतिनिधियों से परम धर्म पीठी राजदूतावास में मुलाकात की। स्कोलास ओकरेंटिस की स्थापना 2001 में अर्जेंटीना में स्कूली छात्रों को एकजुट करने के लिए की गई थी, ताकि उनमें शिक्षा, खेलकूद और संस्कृति के माध्यम से मानवीय मूल्यों का संचार किया जा सके। संत पापा फ्रांसिस के समर्थन से आज स्कोलास ओकरेंटिस संगठन की शाखाएं विश्व के कई राष्ट्रों में स्थापित हो गई हैं। संगठन से जुड़े और इसकी पहलों में शामिल जापान के युवा प्रतिनिधियों ने सोमवार को संत पापा से मुलाकात कर उन्हें बताया कि वे शिक्षा हासिल करने के लिए संकल्परत हैं तथा उसे अपना मिशन मानते हैं, ताकि विश्व में न्याय स्थापित हो तथा सभी युद्धों का अंत हो सके। इस अवसर पर जापान के स्कॉलर्स ओकरेंटिस संगठन के अध्यक्ष होसे देल कारोल ने संत पापा फ्रांसिस का अभिवादन किया और उन्हें एक विशाल कैनवस पर की गई पेंटिंग अर्पित की। युवाओं के साक्ष्य के लिए धन्यवाद देते हुए संत पापा ने समझाया कि प्रज्ञा का अर्थ केवल विचार नहीं है, बल्कि 3 तरह से उसकी अभिव्यक्ति करना है। मनो मस्तिष्क से विचार को व्यक्त करना, दिल से मन की भावना को व्यक्त करना तथा हाथ से उस पर ध्यान देना जो मैं करता हूँ। संत पापा ने कहा कि आपके द्वारा अर्पित पेंटिंग में आपने इन 3 अभिव्यक्तियों का उपयोग किया है, और जब ये 3 समरसता में व्यक्त की जाती हैं, तब सही मायने में हमारी कृति रचनात्मक होती है। युवाओं के साहस की संत पापा फ्रांसिस ने सराहना की और कहा कि अपने विचार अपने आप में ही रखना सुखकर होता है, किंतु उन्हें अन्यों पर प्रकट करना साहस का कार्य है।
Gracias, Papa Francisco.
इसी बीच सोमवार को टोक्यो के शाही प्रासाद में संत पापा फ्रांसिस ने जापान के सम्राट नारुहितो से औपचारिक मुलाकात की। इस अवसर पर सम्राट के परिजनों और शाही महल के अधिकारियों ने संत पापा के साथ तस्वीरें खिंचवाई, जिसके बाद सम्राट और कैथोलिक कलीसिया के परमाध्यक्ष के बीच लगभग 30 मिनटों तक वैयक्तिक बातचीत चली। मुलाकात के अवसर पर ही उपहारों का भी आदान प्रदान हुआ। जापानी मीडिया ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि मुलाकात के उपरांत सम्राट खुद संत पापा को शाही महल से बाहर छोड़ने आए, जबकि अन्य खास मेहमान अपने परिचारक वर्ग के साथ ही सम्राट से विदा ले लेते हैं और सम्राट महल से बाहर नहीं निकलते। विश्लेषकों का कहना है कि यह सम्राट की ओर से संत पापा फ्रांसिस के प्रति विशेष सम्मान का संकेत है। सम्राट से मुलाकात के उपरांत संत पापा ने टोक्यो के मरियम महागिरजाघर में युवाओं से मुलाकात की और उसके बाद टोक्यो के डोम में ख्रीस त्याग अर्पित किया।
संत पापा फ्रांसिस ने संत मरियम महागिरजाघर में युवाओं के साथ मुलाकात की। जापान में रहने वाले युवाओं की सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता का प्रतिनिधित्व करते हुए एक कैथोलिक युवा, एक बौद्ध युवा और एक प्रवासी युवा ने अपनी गहरी आशंकाओं, और आकांक्षाओं को साझा करते हुए संत पापा से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछा। फिलिपिनो प्रवासी लियोनार्डो ने संत पापा से कहा, संत पापा कृपया हमें बताइए कि भेदभाव और धमकाने वाली समस्याओं का सामना कैसे करना चाहिए जो दुनिया में फैल रही है। संत पापा ने लियोनार्डो को दूसरों पर धौंस करना और भेदभाव का अनुभव को साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दूसरों पर धौंस दिखाना, ये हमारे आत्मविश्वास पर हमला करती है। जब हमें सबसे ज्यादा खुद को स्वीकार करने और जीवन में नई चुनौतियों का सामना करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। संत पापा ने इसे एक महामारी के रूप में वर्णित किया और कहा, इसका इलाज करने का सबसे अच्छा तरीका है एकजुट होना और जो गलत है उसे नहीं कहना सीखें। और उन्होंने सभी युवाओं से आग्रह किया कि वे अपने सहपाठियों और दोस्तों के बीच खड़े होने और यह कहने के लिए कभी न डरें कि आप जो कह रहे हैं वह गलत है। डर हमेशा अच्छाई का शत्रु है क्योंकि यह प्यार और शांति का शत्रु है। सभी धर्म सहिष्णुता, सद्भाव और दया सिखाते हैं, भय विभाजन या संघर्ष नहीं। संत पापा ने वहां उपस्थित युवाओं को याद दिलाया कि येसु अपने शिष्यों से हमेशा कहा करते थे, डरो नहीं। संत पापा ने कहा कि ईश्वर और हमारे भाई बहनों के लिए प्यार हमारे डर को दूर करता है। संत पापा ने कहा, दुनिया में कितने लोग भौतिक रूप से समृद्ध हैं, लेकिन वे अकेलेपन का शिकार हैं। अकेलापन और प्यार न किए जाने की भावना गरीबी का सबसे भयानक रूप है। संत पापा ने कहा, हम सभी को आध्यात्मिक गरीबी का मुकाबला करना है, लेकिन युवा लोगों की एक विशेष भूमिका है क्योंकि यह प्राथमिकताओं और विकल्पों में एक बड़े बदलाव की मांग करता है। वे हिम्मत न हारें, अपने सपनों को दरकिनार न करें, विशाल क्षितिज देखने की हिम्मत करें और आप देख पाएंगे कि आपका सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, उन्हें हासिल करें।
संत पापा फ्रांसिस ने जापान की अपनी प्रेरितिक यात्रा के तीसरे दिन टोक्यो के दोमे स्टेडियम में मिस्सा बलिदान अर्पित किया। उन्होंने अपने प्रवचन में कहा कि सुसमाचार जिसे हमने सुना वह यीशु का प्रथम मुख्य उपदेश था। हम इसे पर्वत प्रवचन के रूप में जानते हैं। यह उस सुंदर राह की चर्चा करता है जिस पर हम सभी चलने हेतु बुलाए जाते हैं। पर्वत की ऊंचाई पर हम अपनी इच्छा शक्ति से नहीं पहुंचते, वरन इसके लिए हमें सतर्कता, धैर्य और संवेदनशीलता में अपने जीवन के हर मार्ग में यीशु को सुनने की जरूरत है। यीशु ख्रीस्त में हम उस ऊंचाई को प्राप्त करते हैं जो हमें मानवता के अर्थ को समझने में मदद करती है। यीशु ख्रीस्त के वचन हमें ताजगी के लेप प्रदान करते हैं जहां वे हमें अपनी चिंताओं का परित्याग करते हुए अपने ऊपर विश्वास करने का आह्वान करते हैं। ईश्वर हमें अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं जैसे भोजन और वस्त्र को गौण नहीं बतलाते हैं, बल्कि वे हमें अपने रोज दिन के जीवन का पुनर्मूल्यांकन करने को कहते हैं। वे हमें किसी भी कीमत पर सफलता हासिल करने के धुन में नहीं फंसने को कहते हैं जहां हमें अपने जीवन की कीमत चुकानी पड़ती है। दुनियावी मनोभाव हमें स्वयं के लाभ और अपने स्वार्थपन में व्यक्तिगत खुशी तक ही सीमित कर देता है, जो वास्तव में हमें सच्ची खुशी से दूर कर देता और हम शांति में सच्ची मानवता के संपूर्ण विकास में बाधक बनते हैं।
Como comunidad cristiana, somos invitados a proteger toda vida y testimoniar con sabiduría y coraje un estilo marcado por la gratitud y la compasión, la generosidad y la escucha simple.
ख्रिस्तीय समुदाय के रूप में हम जीवन की रक्षा करने और अपने विवेक और साहस में अपने जीवन के द्वारा करुणा, उदारता और सुनते हुए कृतज्ञता में साक्ष्य देने हेतु बुलाए जाते हैं। हम एक समुदाय बनाने हेतु बुलाए गए हैं जो सीखते हुए धैर्य में दूसरों को स्वीकार करता हो, जो अपने में संपूर्ण, शुद्ध या सर्वोत्तम नहीं है। संत पापा ने कहा कि क्या असक्षम या कमजोर व्यक्ति प्रेम के योग्य नहीं है? कोई जो परदेशी है, किसी ने कोई गलती की है, कोई जो बीमार या जेल में है, क्या वह व्यक्ति प्रेम के योग्य नहीं है? हम सभी जानते हैं कि यीशु ख्रिस्त ने क्या किया। उन्होंने कोढ़ी, अंधे, लकवाग्रस्त व्यक्ति, फरीसी और पापियों को गले लगाया। उन्होंने डाकू को भी गले लगाया, यहाँ तक कि उन्हें भी क्षमा प्रदान की जिन्होंने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया। ख्रिस्तियों के रूप में दूसरों का न्याय करने हेतु हमारे मापदंड केवल यही हो सकते हैं कि हम ईश्वरीय संतान के रूप में सबों के लिए करुणा का स्रोत बने।
टोक्यो के कांताई प्रासाद में सोमवार को जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, जापान के वरिष्ठ प्रशासनाधिकारियों और राष्ट्र में सेवारत कूटनीतिज्ञों ने संत पापा फ्रांसिस का साक्षात्कार कर उनका संदेश सुना। जापान के गणमान्य अधिकारियों के बीच संत पापा फ्रांसिस का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अभिवादन पत्र पढ़ा।
फ्रांसिस्को रोमा क्यों को दायका कुरेसेकी नो ओमिना समा न्यों सेफ ओ दायशो शिते हितो कोतो गो आईसात्स ओ मोशारिमास क्यों को दायका निप्पोन ए माता सोरी दाइजिन कांते ए यो कोसो ओकोची कुदासाइमाशिता।
जापान आने के लिए उन्होंने संत पापा के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि राष्ट्र में उनका आगमन अनुग्रह का स्रोत है। जापान की प्राकृतिक आपदाओं के क्षणों में संत पापा फ्रांसिस द्वारा भेजे गए संदेशों के लिए प्रधानमंत्री ने कृतज्ञता ज्ञापित की तथा राष्ट्र में पुनर्वास और निर्माण कार्यों में कैथलिक कलीसिया के योगदान की भूरी भूरी प्रशंसा की।
जापान की प्रेरित यात्रा में 25 नवंबर को संत पापा फ्रांसिस ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, वहां के सरकारी अधिकारियों एवं कूटनीतिज्ञों से मुलाकात की। संत पापा ने प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए उन्हें धन्यवाद दिया तथा शांति निर्माण हेतु उनके कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा, आप प्रत्येक अपने अपने तरीके से इस महान राष्ट्र की शांति एवं लोगों की समृद्धि के लिए कार्य कर रहे हैं। संत पापा ने जापान के सम्राट नारुहितो के प्रति भी अपना विशेष आभार प्रकट किया। उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए शाही परिवार तथा जापान के सभी लोगों पर ईश्वर की आशीष की कामना की। परमधम पीठ एवं जापान के बीच संबंध की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए संत पापा ने कहा, परमधम पीठ एवं जापान के बीच मैत्रीपूर्ण संबंध लंबे समय से रहा है और यह इस भूमि के प्रथम मिशनरियों की प्रशंसा एवं प्रशस्ति पर आधारित है। हमें जेसुइट अलेसांद्रो वलिंगानो के शब्द याद हैं, जिन्होंने 1579 में लिखा था, जो को यह देखना चाहे कि प्रभु ने मनुष्यों को क्या प्रदान किया है तो उसे देखने के लिए उन्हें जापान आना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से कई संपर्क एवं सांस्कृतिक तथा कूटनीतिक मिशन ने इस संबंध को बढ़ावा दिया। इन संपर्कों ने दोनों पक्षों के हितों के लिए धीरे धीरे संस्थागत रूप लिया। संत पापा ने कहा, मैं यहाँ आया हूँ ताकि जापान के कैथलिकों के विश्वास को सुदृढ़ कर सकूँ, जरूरतमंद लोगों के प्रति परोपकारी कार्यों एवं देश जिसके वे नागरिक हैं उसकी सेवा को बल प्रदान कर सकूं। एक राष्ट्र के रूप में जापान उन लोगों का विशेष ख्याल रखता है जो कम भाग्यशाली हैं, विकलांग और अपाहिज हैं। मानव जीवन को केंद्र में रखने का प्रोत्साहन देते हुए संत पापा ने कहा, हम जानते हैं कि अंत में सभी देशों की सभ्यता उनकी आर्थिक शक्ति से नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों पर ध्यान देने तथा जीवन को बढ़ावा देने और फलप्रद बनाने द्वारा मापी जाएगी। अंत में संत पापा ने सभी अधिकारियों को उनके निमंत्रण, आतिथ्य सत्कार एवं उदार सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।